हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों के ओर से। धन्यवाद श्री गोवर्धन जी, कीर्तन और रीमा और माता जी, इसकी दादी राजा रानी माता जी का, जिन्होंने अपने निवास स्थान पे रियांस के सत्संग और कीर्तन का आनंद लेने के लिए हम सबको अवसर दिया। हरे कृष्णा। तो एक प्रश्न पूछता है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता में कि आदमी कोई अच्छे संग मिलने से कभी भक्ति कर ले, फिर किसी कारण से भक्ति में चूक जाए, तो शुरू करे लेकिन फिर चूक जाए। पहले तो श्रद्धा थी, विश्वास था, लेकिन फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि वो भक्ति पूरी न कर पाया, तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? अर्जुन का ये प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति का होगा क्या? योग चलित, मतलब योग से विचलित हो गया। क्यों हो गया? यत्न नहीं किया, अयति, यत्न करने में सावधानी नहीं रही, परिस्थितियां कोई ऐसी आ गई, तो फिर इसका क्या होगा? ऐसे तो नहीं है कि उसको न तो संसार का सुख मिला और न राम मिला, न नाम राम मिला, न दाम मिला, ऐसी तो इसकी स्थिति नहीं होगी। क्योंकि सामान्य संसार में हम ऐसे समझते हैं, कहता इधर बैठो, उनको आप क्यों कह रहे हैं बैठो इधर, नहीं क्या कह रहा है, करता है इसकी बस। नहीं नहीं सो अच्छा आय तो पर्योप्रेत कैसे श्लोक जाएगा? योगाचलित मानस अप्राप्यम योग सिंधिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो ये अर्जुन का प्रश्न है, चलते दिन को बजाने दो, इससे आज साजमय कथा होगी। छठे अध्याय का श्लोक है, अभी एग्जैक्टली देखते हैं कौन सा है, उसको ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे लिखा है। हरि बोल, हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, गाओ हरि बोल, बोलता अयत श्रद्धा प्रोपेता कृष्ण कृष्ण हरि 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 बोल हरि बोल। ये बात इसलिए अर्जुन पूछ रहा, पहले अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है कि मन तो इतना चंचल है कि वो वश में नहीं आ सकता है, और मन वश में नहीं आएगा तो फिर हम आपको कैसे याद कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा मन में वश करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा और कुछ वैराग जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो अर्जुन कहता है अभ्यास करना शुरू तो किया लेकिन जीवन बहुत लंबा है और बीच में कई ऐसी परिस्थितियां और दुर्घटनाएं हो सकती हैं कि हम जो कार्य शुरू किया है उसको पूरा न कर सके। तो अर्जुन का ये प्रश्न है अयति ही, ये 37 श्लोक 37 है। अयति का मतलब यत्नशील जो नहीं है, एक होता है यति मतलब यत्नशील, अयति मतलब जिसने यत्न नहीं किया, असावधान हो गया। अयति ही श्रद्धयोपेतो, पहले तो श्रद्धा से भगवान की पूजा शुरू की थी, श्रद्ध उपेत, श्रद्धा से भगवान का नाम लेना शुरू किया था अच्छे संग के कारण, लेकिन फिर योग चलित, योग से विचलित हो गया, गिर पड़ा। नहीं उधर नहीं जाएगा, इसको मृदंग भी इधर ही दो, योग चलित मानस अप्राप्यम योग सिद्धिम, उसको योग की सिद्धि, योग की सिद्धि, योग योग का अर्थ होता है सीढ़ी या उपाय, योग का मतलब है उपाय। इसका योग क्या है, उपाय क्या है, किस चीज का उपाय, भगवान तक पहुंचने का। तो भगवान तक तो पहुंचा नहीं, अप्राप्य योग समसिद्धिम, योग की सिद्धि मतलब भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं। काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी गति क्या होगी, वो कहां जाएगा फिर। और अर्जुन इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कहता है ऐसे तो नहीं है, कच्छिन नोभ्य विभ्रष्टस चिन्नाभ्रम एव निवश्यति, ऐसे तो नहीं है जैसे आकाश में कोई छोटी सी बदली होती है और हवा का ऐसे झोंका आया और न बरसात की उस बदली ने न किसी को छाया दी। भी बादल आए तो बरसात दे या छाया दे, दो काम तो बादल को करने ही चाहिए। तो न किसी को छाया दी न बरसा बरसी और ऐसे ही हवा में बिखर गई, ऐसे तो नहीं है उस आदमी का कि न भगवान मिला न सुख संसार का मिला, कुछ भी नहीं है, ऐसे तो समाप्त तो नहीं हो जाएगा। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथी, किसी कारण से वो जो भगवान के रास्ते पे चल गया था उसमें विमूढ़ हो गया। विमूढ़ होने का मतलब कहीं अटक गया, विमूढ़ कहते हैं अटकने को। कोई चीज विशेष रूप से पशु पक्षी जब वो जो जो बच्चा नहीं देखता है तो कहते हैं गर्भ मूढ़ हो गया, इसका मतलब उसका बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको मूढ़ बोलते हैं। मूढ़ का मतलब रुक जाना, अटक जाना। तो वो तो बेचारा कहीं अटक गया, इसका मतलब है कि लिफ्ट में आप चढ़ के पहले माले से जाना था, पांचवें माले के बीच में लाइट चली गई और आप तीसरे में अटक गया, तो कहते हैं लिफ्ट विमूढ़ हो गई, तो लिफ्ट अटक गई बीच में, तो जाना था वहां तो नहीं पहुंच पाए। तो हमको जाना था तो शुरू तो किया था भगवान का योग, मतलब साधन, योग का असल उपाय शुरू किया था कि हम भगवान तक पहुंचेंगे, लेकिन बीच में कहीं अटक गए। अब फिर पूछते हैं आगे चल के, इस विषय में मेरा संशय है। संशय क्यों है, बोला संसार में कोई आदमी भाई किसी काम को शुरू करने जाता है पढ़ने के लिए, भाई पांच साल का मानो कोर्स है डॉक्टरी का, तीन साल पढ़ के घर वापस आएगा तो तीन साल भी गए डॉक्टरी भी नहीं मिली, तो तीन साल भी गए दोनों बात गए ना, तो उसको कोई डिग्री तो नहीं मिलेगी ना। तो ऐसे तो नहीं है कि उसने आधा काम किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो काम किया वो भी बेकार गया। इस दुनिया में जो भी काम करो अगर पूरा नहीं करोगे तो फल भी नहीं मिलेगा, टाइम भी गया, इस दुनिया का तो ये नियम है। तो क्या इसलिए मेरे को संशय है कि उस व्यक्ति का होगा क्या, उस व्यक्ति का क्या होगा। और फिर भगवान को आतुर्भाव से कहता है ये मेरा संदेह आपके अलावा और कोई इसका समाधान नहीं कर सकता, ये पूछने की शैली है, त्वद अन्य तुम्हारे अलावा, संशयस्य से इस मेरे संशय का, इस मेरे डाउट का, शक का, जो मुझे थोड़ा सा शंका हो गई है, चेतद न उपद्य, मुझे और कोई रास्ता दिखता नहीं है और कोई साधन सूझता नहीं। इसका अर्थ है कि पूछने के वक्त व्यक्ति को शरणागति भाव से पूछना चाहिए कि बस मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं, पार्थ अर्जुन को जब भी भगवान के हृदय में बहुत प्रेम उमंड आता है अर्जुन के लिए तो अर्जुन के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहते हैं पार्थ। पार्थ संबोधन सबसे ज्यादा भगवद गीता में अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और मां के नाम से कहा है, पिता के नाम पांडव के नाम से हो सकता है दो तीन बार मुश्किल से हो, पहला नंबर पार्थ है दूसरा कौन थे। तो ये दोनों माता के नाम से अर्जुन को संबोधन है क्योंकि कुंती कृष्ण की बुआ है। तो वो जो प्रेम का हृदय में भाव आता है भक्त का, तो भगवान अर्जुन का ऐसा संशय में देखा, भाई कोई आदमी आपके पास कहे मैं परेशान हूं तो आप क्या करोगे, उसको सीधे खड़े हो जाए ऐसे बोलेगे नहीं, पीठ के ऊपर थपथपा के बोले बैठिए चिंता मत करो सुनो। तो ये जो उस वक्त भगवान ने अर्जुन के पीठ के ऊपर आ सके पार्थ, तो उससे भी आधा संशय दूर हो जाता है। कोई प्रेम से किसी की पीठ के ऊपर हाथ रख दे जो जब ये आदमी दुख में हो तो आधा तो उसका संदेह दूर हो जाता है। इसका मतलब वो उसके हृदय में सहायता करने की सहानुभूति है, उसका भाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो गेस्चर है वो इम्पॉर्टेंट है वर्ड से ले रहा, पहले तो भगवान ने ऐसे कहा पारत न ईह न इस दुनिया में न उत्र न मरने के बाद न ईह न मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है। जो आधा काम शुरू किया फिर रह गया इस भक्ति के रास्ते पे, उसका न तो इस दुनिया में अहित होता है और न ही इस दुनिया से जाने के बाद उसका कुछ विनाश होता है। और फिर कहते हैं न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने कल्याण का कार्य किया, अपनी आत्मा के कल्याण का कार्य, यहां कल्याण आत्मा के कल्याण का अर्थ निकल लेना चाहिए, जिसने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो कार्य किया, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए जो कार्य शुरू किया, तात, तात शब्द जो है वो गुरु शिष्य को बोलता है या बाप बेटे को बोलता है। तात शब्द वात्सल्य का वाचक है। तात अपने बहुत स्नेह से प्रेम को, तात मतलब बेटा, ऐसा भाव है। यहां तो प्रभुपाद ने तात का लिखा है माय डियर फ्रेंड, अपने मित्र को, मित्र जो एक एक बड़ा भाई छोटे को जैसे कहे, ये भाव है तात में। तो पहले पहले आप संशय जब भी किसी का हो और आपके सामने आए, चाहे आपका बच्चा हो, और बच्चों को तो रोज 100 संशय घर में होते हैं, ये क्यों यहां है, ये कैसे ऐसे है, लेकिन कोई आध्यात्मिक संशय लेके आए तो पहले गेस्चर कैसा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा भगवान का। एक तो उसको बेटा कह दिया, मेरे प्रिय कह दिया, मेरे अपने कह दिया, क्यों चिंता करते हो, यहां भी तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, परलोक भी तेरा खराब नहीं होगा। तो ये भगवान के कहने की शैली है। न ता, तात उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। दुर्गति, गति का अर्थ होता है, एक तो गति कहते हैं स्पीड को, एक गति कहते हैं स्थान जिसकी उसके ऊपर आदमी जाएगा। भाई गति का मतलब स्थान या गति का मतलब स्पीड। तो दुर्गति का यहां अर्थ है उस सही गलत जगह पे नहीं जाएगा, उसका उसको किसी गलत जगह का यहां अर्थ लेना चाहिए, नरक आदि में अथवा नीचे जूनियों में नहीं जाएगा। दुर्गति, दुर का मतलब बुरी, एक होती है सुख गति, एक होती है दुर्गति। तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, न इस दुनिया में होगी और न ही परलोक में होगी, क्योंकि उसने कल्याण का कार्य किया है। यहां कल्याण का अर्थ होना चाहिए आत्मा कल्याण का। कल्याण वैसे, कल्याण का मतलब क्या, अर्थ क्या लेना चाहिए, कल्याण शुभ, कल्याण अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कल्याण का, वेलफेयर, मंगल, मंगल कल्याण, मंगल, मंगल भी इसी का दूसरा भाव है। तो अर्जुन ने फिर देखा, मतलब अब अर्जुन ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने कहना शुरू किया, प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम। भाई क्यों छोड़ी होगी उसने, जो जो काम शुरू किया था मैं आध्यात्मिक रास्ते का, छोड़ा क्यों होगा। छोड़ने का इसके अनुसार एक कारण दिखता है। क्या कारण दिखता है, कि भोग में कहीं फंस गया होगा। इस दुनिया में योग से भ्रष्ट भोग करता है, भोग में फंसा तो योग गया और रोग लगा, ये सीधा सा साधन से है। तो कहीं भोग में फंस गया होगा तब उसने योग छोड़ा ना, ये सीधा सा इसका अर्थ ये है कि कहीं भोग में फंस गया होगा। अब भगवान ने कहा क्यों, इसको भोग की इच्छा रह गई थी ना, इसके लिए इसने मेरा भजन छोड़ा, अब इसको इतना भोग देना चाहिए, इतना भोग देना चाहिए, इतना भोग देना चाहिए कि फिर इसको कभी भोग की इच्छा ही ना हो। तो अब भगवान क्या करते हैं, उसको कहते हैं प्राप्य पुण्य कृतान लोका मुशित्वा शाश्वती समाह। शाश्वती समा, बहुत दीर्घ काल तक जहां पुण्य आत्माएं जाती हैं, पुण्य कृताम लोकाम, वो लोक जहां पुण्य आत्माएं जाती हैं, साधु लोग जाते हैं, जहां बहुत सुख सुविधा है, न जहां मरने का भय है, जहां न बीमार रहने का भय है, जहां न बूढ़ा होने का भय है, ऐसे स्थान के ऊपर दीर्घ काल, दीर्घ काल मतलब हजारों सालों तक उसको बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं दी जाएंगी। ये थोड़ा सा काम किया है उसको, कितना काम किया है इसको समझ लो, 25% 30% किया है उसकी बात कर रहे हैं। कितना शुरू किया है भाई, हमारी उम्र मानो के एक एवरेज आदमी की 80 साल उम्र है, उसमें से मानो के 5-10 साल कभी उसने किया है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक्टिव है हमारी 40 साल का साल उम्र काम की, बाकी तो बचपन की बुढ़ा के भी बेकार हो गई। तो उसमें मानो के उसने 20-25% भी किया है, तो उसको पुण्यकृताम लोकम उषित्वा शाश्वती समा, फिर क्या होगा वहां भोग भोगने के बाद उसको जन्म देगा, कहां जन्म मिलेगा वापस नीचे आएगा तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, उसको किसी पवित्र, सूची मतलब पवित्र, और धीमताम मतलब ना श्रीमताम मतलब धनी, किसी एरिस्टोक्रेटिक अच्छे संपन्न परिवार में जन्म मिलेगा। तो इसका एक अर्थ ये निकलना चाहिए, जो किसी अच्छे, देखो एक में एक बुद्धिमानी का भगवान जब बोलते हैं ना तो उसमें बहुत बड़ी गहराई होती है। श्रीमताम के आगे क्या लगा दिया, सूची ना, श्रीमताम का अर्थ धन है लेकिन काला नहीं, सूची नाम है। इसका अर्थ ये नहीं कि दाऊद के घर में पैदा हुआ। बहुत एक एक शब्द जो है ना उसका अपना एक रहस्य है, सूची मतान श्री मतान के है। इसका एक अर्थ है किसी पवित्र परिवार में जिसका वातावरण सात्विक, घर में वातावरण अपने आप ऐसे है जैसे, और श्री मतान का अर्थ है जिसको रोटी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, कुछ उसको जीवन की आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वहां उसका जन्म होता है। तो इसका अर्थ है कि कोई अगर किसी संपन्न परिवार में जन्म लेता है बच्चा, तो समझना चाहिए कि इसने कहीं न कहीं अच्छे कर्म किए हैं तब मिला है, लेकिन सूची नाम को भूलना नहीं चाहिए। अब जिसने 80% से ऊपर कर ली है भक्ति अथवा योग का अभ्यास, और किसी कारण से किसी परिस्थिति में थोड़ा रह गया है, तो उसके लिए क्या है वो अथवा, अथवा का मतलब दूसरे जो ज्यादा प्रयास किया लेकिन थोड़ा चूक गए, उनका क्या होगा, अथवा योगीनाम एव कुले भवति धीमताम, उसको तो किसी साधु महात्मा के घर में जन्म मिलेगा, उसके लिए वातावरण ऐसा है वो उठेगा तो सुबह घंटी बजती हुई सुनाई देगी, आरती होती हुई सुनाई देगी, यज्ञ होता हुआ दिखाई देगा, गायक दोहती हुई दिखाई देगी, उसको वातावरण ही ऐसा मिलेगा जैसे भाई जो डॉक्टर के घर में पैदा हो, जिसकी अस्पताल में वो सारा दिन सुई लगती हो, तो उसका दिमाग तो पहले से जो आदमी आएगा उसको ऐसे करता रहेगा, तो जो देखेगा वही करेगा ना, तो उसको वातावरण ही ऐसा मिलेगा। लेकिन यहां भी एक प्रश्न कभी कभी उठ सकता है कि यहां लिखा है योगी नाम, तो योगी तो गृहस्थी होते नहीं है, परिवार होता नहीं, तो उसके घर में जन्म कैसे लेगा, इसलिए एक शब्द बड़ा अच्छा लिखा है कुले भवती धीमताम, योगी के कुल में जन्म लेगा, तो गुरु का कुल कहते हैं, जो गुरु के पास जाते हैं ना तो कहते हैं गुरु का कुल है, इसका मतलब है किसी धीमताम, योगी कैसा, जैसे श्रीमताम के साथ सूची नाम लगा है ना, ऐसे योगी के साथ धीमताम लगा है, धीमताम का मतलब बुद्धिमान, जिसकी बुद्धि में भगवान विराजमान हो उसको बुद्धिमान कहते हैं। रात ही हमने कहीं परवचन में कहा था बुद्धि में भगवान को बिठाओ, जब भगवान कहते हैं कि मन मुझे अर्पण करो, अब मन ऐसी तो चीज है नहीं कि आप उसको आलू और टमाटर की तरह टोकरी में डाल के भगवान को अर्पण करके आओगे, भाई मन है तो जहां मन है उसके पास भगवान को बिठा दो, मन कहां है, बोला बुद्धि के आगे खड़ा है, तो पीछे बुद्धि में भगवान को बिठा दो तो अपने आप मन को पकड़ लेगा। मन को वश में करने का साधन ये है कि बुद्धि में भगवान को बिठा दो, और जो भगवान को बुद्धि में बिठाते हैं उसको बुद्धिमान बोलते हैं, बुद्धिमता। भाई कोई कहे मन वश में करना है तो मन वश में कैसे होगा, तो कहते मन भगवान को अर्पण कर, तो भगवान को मन कैसे अर्पण करेगा, उठाने की चीज है क्या, ले जाने की चीज है मन, मन ऐसे तो है नहीं कि उठा के कहीं जाके रख के आए, टोकरी में तो रख के नहीं जा सकते, तो मन के पीछे बुद्धि है, और बुद्धि सारथी है और भगवान नित्य सारथी है। अर्जुन के सारथी तो बने थे, हर जीव के सारथी होने को तैयार है, बस हम उसको बुद्धि में बिठा दें, वो सारथी ड्राइवर बनने को तैयार है, वो ही चलाएंगे तो हम चल पाएंगे। ये कहते ना, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ। तो मेरी डोरी का मतलब मेरा मन, वो जो लगाम होता है ना उसको डोरी बोलते हैं, घोड़ों के लगाम को डोरी बोलते हैं। तो भक्त बोलता है, पीछे जो बैठा है यात्री, वो बोलता है मेरा ड्राइवर, मेरे स्टेयरिंग आपके हाथ में भगवान है, क्योंकि एक्सीडेंट से बचा लेना। मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरा मन आपके हाथ में है। तो आपके हाथ में है तो आपको कहां बिठाना है, बुद्धि में बिठाना है। तो धीमताम का मतलब ऐसा योगी, ऐसा साधु जिसने हृदय में भगवान को विराजमान किया है, उसके कुल में जन्म होगा। कुल का अर्थ यहां ये होना चाहिए कि ऐसे भले व्यक्ति के घर में जन्म होगा, अगर वो गृहस्थी साधु है, अथवा अगर यति साधु है तो उसके शिष्य परंपरा में आ जाएगा। तो हम कहते जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा कुल है इस्कॉन, और हम सब इस कुल में हमारा जन्म हुआ है। तो ये धीमताम बुद्धिमताम एक कृष्ण भावना भावित साधु के बड़े परिवार में जन्म हुआ है, ये भाग्य की बात है। ये धीमताम का अर्थ है, यो कुले भवती धीमताम। और फिर उसके लिए क्या, एतद्धि दुर्लभतम, ऐसा जन्म दुर्लभ है। ऐसे साधु के संरक्षण में आना बहुत दुर्लभ है। एतान धी मतलब ऐसे बुद्धिमान, भगवत प्रायण भक्त के संग में उसके कुल में जन्म लेना दुर्लभम, लोके जन्म यद ईदृशम, इस संसार में ऐसा जन्म संभव नहीं है। और इसी की भावना में प्रभुपाद ने बहुत निम्रता से अपने लिए लिखा है कि हमारे को भी ऐसे कुल में जन्म मिला जहां बचपन में हमारे लिए हमारे पिता ने मृदंग लेके रख दिया कि सिखाता, और भगवान जो साधु आता उसको घर में बुला के कहता इसको आशीर्वाद करो, राधा रानी का भक्त बने। तो ये ऐसा, और हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म, भक्ति विनोद ठाकुर के जगन्नाथपुरी में जन्म ऐसी जगह हुआ जहां भगवान जगन्नाथ के रथ का दर्शन बचपन में करने का मौका मिला। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, तत्र तत्र मतलब जब ऐसा किसी का जन्म होता है, तम बुद्धि संयोगम, उसकी बुद्धि में वो पहला संयोग वो भक्ति बनी हुई होती। ऐसे घर में जन्म वाले के मन में वो सब बना हुआ था। लभते पूर्व देहिकम, पुराने जन्म की वो जो की हुई उसकी साधना है ना, वो उसको याद रहती है, वो उसके मन के ऊपर ऐसी अंकित होती है। यततेच ततो भूय संसिद्धिम कुरु नंदन, हे कुरुनंदन, वो अपने आप ऐसे ही काम शुरू कर देता, उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। अब जैसे ये बच्चे को देखने से ऐसे लगता है कि जैसे खड़ताल बजा, इसको किसी ने सिखाया नहीं है, किसी स्कूल में गया नहीं, और इतना मीटर से अपने आप बजा रहा है, उसको उसमें मौज ले। और इतना हम में से किसी को उसके न गाने वाले को न दूसरे सुनने वाले को सुख मिला जितना वो उसमें सुख ले रहा था। ये तो अपने एक दृश्य, एक जिसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप में देखा। तो इसका अर्थ है कि इसने अपना ये शिक्षा पहले कहीं ग्रहण की हुई है, नहीं तो ऐसे संभव नहीं है। तो यहां क्या हो गया, पूर्व अभ्यासेन तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वधिकम, पौर्व देहिकम, जो पहली देह में रहा है उसमें जो उसने अभ्यास किया था वो उसके उसके चेतना में अपने आप जागृत हो जाएगा। यततेच ततो भूय, अब दोबारा यतन करना शुरू कर देगा, पहले अयति हो गया था ना, अभी यतन करेगा। संसिद्ध हो, अब क्या करेगा, अब सिद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा। पूर्व अभ्यासेन तेने हृयते ही अवश्यो अपि स, उसको कहीं और लगाओ वो वापस वहीं जाएगा। पुराना अभ्यास उसका इतना होता है कि अनायास बिना प्रयास के उसको वो अच्छा ही लगने लग जाएगा, और फिर बड़े होते हुए उसको कहेंगे कि मैं ब्रह्म शब्द अति वर्तते, इसका मतलब वो छोटे छोटे पूजा पाठ को परित्याग कर देगा, सीधा अपना जहां काम छोड़ा होगा वहां शुरू करेगा। भाई प्रयास किसी को कहेंगे आप एबीसीडी से शुरू करो, वो उसको एबीसीडी पहले से आती है इसलिए वहां से शुरू करेगा ही नहीं। तो वो वेदों के नियमों के अंतर जो कर्म कांड है उसी का परित्याग कर देगा। और फिर लिखा है प्रयत्नाद, वो प्रयत्न करेगा, यतमानस्त और यतन भी करेगा, ये दो शब्द साथ में है। प्रयत्न करेगा कि आगे बढ़ूं अब, और यतन करेगा कि दोबारा कहीं धोखा न खाऊं, क्योंकि एक बार तो खा के आया है। और इसका उदाहरण भागवत में जड़ भरत का है, वो महाराज भरत जिसके नाम से ये भारतवर्ष हुआ, वो महाराज भरत राजपाट छोड़कर तपस्या करने के लिए चले गए गंडकी नदी के किनारे के ऊपर। रोज सुबह शाम स्नान करते, संध्या वंदन करते, ध्यान जप करते, लेकिन हृदय में एक बार दया का उत्पन्न हुआ। एक मृग को देख के, एक गर्भवती हिरणी को देखा, पीछे शेर ने धाड़ा, हिरणी नजर से नदी के ऊपर से जैसे छलांग लगा रही थी, हिरणी का बच्चा गिर गया, हिरणी के तो प्राण निकल गए। अब छोटे से उस हिरणी के बच्चे के ऊपर दया आ गई महाराज भरत को। दया आना अच्छी बात है, अच्छा एक लक्षण है, लेकिन है बाहर अंग। दया दूसरे के ऊपर करनी चाहिए। दया करो और फिर भूल जाओ तो ठीक है, लेकिन दया करके और उसको अंदर लेके चले गए तो फिर वो मोह में परिवर्तित हो जाएगा। दया बाहर अंग है तो अच्छी वृत्ति है, अगर अंदर अंग ले गए तो मोह में परिवर्तित हो जाएगा। अब महाराज भरत का उस हिरण के छोटे बड़े इस बच्चे से मोह हो गया, और मोह इतना हुआ कि अब जो भगवान का भजन कर रहा था उसमें आधा उस हिरण के बच्चे को पालन पोषण में लग गया, और उसमें इतनी आसक्ति बढ़ गई कि एक दिन नहीं आया हिरण का बच्चा, उसको ढूंढते ढूंढते अंधेरे में रात को पहाड़ के कहीं चट्टान से नीचे गिर पड़े और प्राण निकल गए, लेकिन अंत समय याद हिरण था, तो दूसरे जन्म में हिरण का जन्म मिला। लेकिन फिर भी जो साधन किया था वह उनको याद था वहां, और वहां से हिरण होने के बाद भी वहीं वापस उसी पुल आश्रम में आए जहां वो पहले तप करते थे, और जितने दिन हिरण शरीर में रहे तब शांति से रहे, उस शरीर को छोड़ के फिर जड़ भरत एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, कुले भवती धीमताम, एक बीच में बाधा पड़ गई, लेकिन फिर जड़ भरत बन के जब जन्म हुआ ब्राह्मण के घर में, तब ब्राह्मण के कहा कि गायत्री मंत्र पढ़ो, नहीं नहीं जरूरत नहीं है उसका, ये नहीं कहा जरूरत नहीं है, लेकिन छह महीने प्रयास करने से भी नहीं सीखा, छह साल प्रयास करने से भी नहीं सीखा, क्योंकि वो तो उससे पहले ऊपर उठा हुआ था, वो तो ये सब कुछ कर ही चुका था, अब वो दोबारा फंसना ही नहीं चाहता था किसी भी ऐसे काम में जिससे उसको फिर भटकना पड़े। वो उस जड़ भारत को डाकुए ने पकड़ के काली देवी के मंदिर में बोला कि अच्छा खासा मोटा है, खा पी अच्छा रहा है, इसकी बलि चढ़ाते हैं, और वो चुप करके बैठा था, नहलाया धुलाया खिलाया खाया पिया, जब काली के सामने ले गए और वो जो डाकू उसको बलि चढ़ा रहे थे तलवार ले रहे थे, काली मूर्ति से निकल के तलवार लेके उन सबको मार दिया और जड़ भारत को रक्षा कर दी। तो इसका अर्थ ये है कि काम थोड़ी भक्ति पहले की थी तो देवता भी उसके सहयोगी बन गए, अपने भक्तों को तो दकाली ने मार दिया लेकिन भगवान के भक्त की रक्षा की, अपने भक्तों को स्वयं मार के भगवान के भक्त की रक्षा की, और फिर वो जड़ भरत और सिंधु सुवेद का राजा अपने आप को पालकी में उठा के जा रहा था कपिल आश्रम गंगा सागर, उसका एक पालकी उठाने वाला बीमार हो गया, रस्ते में इसको देखा मोटा तपड़ा, पालकी उठाने के लिए कह दिया, ये पालकी उठाए तो नीचे देखे कि कहीं कोई चींटी पांव के नीचे तो नहीं आ रही है, तो पांव कभी इधर रखे कभी उधर रखे, तो राजा को ऊपर झटका लगे, वो बोलता ठीक नहीं चलते हो, तीन बोलते हैं हम तो अच्छे चलते हैं, इसको नहीं आता है, ट्रेंड नहीं है, तो ऊपर से राजा ने कहा तुम क्यों नहीं चल सकते हो, खाते पीते नहीं हो, तुमसे भार नहीं उठता है, बहुत कमजोर हो, दिखने में मोटे लगते हो। जब डांटने लगे राजा तो पहली बार जड़भरत ने मुंह खोला, मोटा पतला किसको कहते हो राजा, गरीब किसको मानते हो, तुम तो शरीरों की परिभाषा बोलते हो, आत्मा को जानते हो। रघुगण तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो जंगल में ऐसे पड़ा हुआ भिखारी जैसे, और बात हम आत्मा की कर रहा है, और कह रहा है तुम अपने आप को राजा मानते हो, इनको नौकर मानते हो, और बगैर इनको तनख्वाह दिए हुए अपने आप को उठाते हो, तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, तुम समझते नहीं हो तुम्हारे को भोगना पड़ेगा। अब तो महाराज रघुगण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उनके नौकरों के सामने ये बोल रहा है जो उसके कहार चल रहे हैं, राजा के लिए ये अपमान की बात है। लेकिन राजा बुद्धिमान था, एक बार देख ये कौन है, तब उसने कहा मैं महाराज भरत हूं। महाराज भरत के मेरा तो एक छोटा राज है भारतवर्ष में, महाराज भरत के नाम से तो ये पूरा भारतवर्ष था। तब तो चरणों में गिर के उससे पूछा कि आप मुझे आध्यात्मिक शिक्षा दीजिए। तो ये दूसरे जन्म में वो किसी वैदिक विधि से पूजा पाठ में अटका ही नहीं, सीधा भगवान भक्ति में लगा रहा, कहीं अपने आप को। तो ये कि ऐसा व्यक्ति फिर प्रयत्न करता है और यत्न भी करता है, प्रयत्न ये करता है आगे बढ़ता है बढ़ना है, और यत्न ये करता है कि नीचे गिरना नहीं। प्रयत्नाद यत मानसते योगी संग सिद्धिम क्लबश, सारे कठिनाइयों के ऊपर योगी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अनेक जन्म संग सिद्धिम ततो याति पराम गतिम, और ऐसे दो तीन जन्म तो जड़भरत के भी हो गए लेकिन फिर परम सिद्धि को प्राप्त किया। और उधर महाराज जो बाद में गजेंद्र बने, महाराज इंद्रद्युम्न तपस्या तो करने गए लेकिन किसी कारण से साधु का अपमान हो गया, अगस्त ऋषि का, शिव भक्त अगस्त ऋषि का अपमान हो गया, तो हाथी के झुंड में जाना पड़ा। हाथी के झुंड में चले गए लेकिन जब कहते भोग ज्यादा मिला, लेकिन जब मगरमच्छ ने पांव को पकड़ लिया तो पुरानी याद आ गई प्रार्थना, जो वो महाराज इंद्रद्युम्न के जन्म में कर रहे थे, उसको वो अपनी प्रार्थना याद आ गई, और उसने जो गजेंद्र की ये प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने आकर उसकी रक्षा की। तो ये उदाहरण है कि जो आदमी थोड़ा भी इस रास्ते में चलता है, ये भगवान पहले भी चौथे अध्याय में कह के आए हैं, चौथे अध्याय में मेरे ख्याल में कह के आए हैं, सॉरी दूसरे अध्याय में कहा नेहा भी कर्म नाश वस्ती प्रत्यव्याय स्वल्पम अस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। अगर इस रास्ते में थोड़ा भी कभी आपने अभ्यास, एक दिन भी कभी हरि कथा सुनी है, कभी अचानक भक्तों के संग में हरि कीर्तन किया है, तो मुश्किल से मुश्किल दुर्घटना का समय कभी आया तब वो आपकी सहायता करेगा। जब और कोई रक्षक नहीं होगा तब ये आपका कौन सा काम का, स्वल्पम अस्य धर्म से, कौन सा धर्म, भागवत धर्म, इसका आचरण अगर आपने थोड़ा भी कभी किया होगा तो उस वक्त ये आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी रक्षा करेगा। जैसे अजामिल की रक्षा अचानक नारायण के नाम लेने से बहुत भयानक यम दूतों के भय से की गई, तो मृत्यु जैसे संकट में भी आपका कभी थोड़ा सा किया हुआ शुभ भक्तिमय कर्म आपकी रक्षा करेगा। तो इसलिए ये सत्संग करने का प्रेरणा हुई कि छोटे बच्चे को अगर ये सब करताल बजाने का शौक हो रहा है, मृदंग देख के उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, कीर्तन कर रहा है और उसमें उसके अंदर में कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मतलब इसका पूर्व अभ्यास है, पहले कोई जन्मों का अभ्यास है, कुछ भी थोड़ा बहुत है तब ये संस्कार अपने आप अनायास पैदा हुए। तो कहते हैं एक साल